सागर की जितनी गहराई, अंबर की जितनी ऊंचाई, सूरज में जितनी रोशनी, चंदा में जितनी चांदनी, प्रभु प्यार तुम्हारा ऐसा है, दिल से आवाज आई। सागर की जितनी गहराई, अंबर की जितनी ऊंचाई, खुशी प्रेम के दीप जले, जीवन में तेरे सहारे, प्रभु सुमन बन महक उठे, देखे तेरे नजारे, देखे तेरे नजारे, जैसे मुस्कुराते हैं जो इंद्रधनुष रंग लाते हैं, प्रभु प्यार तुम्हारा ऐसा है, सागर की जितनी गहराई।
ओम शांति। अमेरिका के एक लेखक जोहान उटर की लिखी हुई एक किताब है, अ ग्रिजली टेल, जिसमें लेखक ने अपने जीवन का एक वृत्तांत सुनाया है। पूरी किताब ही उसके ऊपर है, एक भालू से सामना। वो लिखता है कि वो छुट्टियां मनाने वो और उसकी बेटी जो कि 18 वर्ष की थी, एक स्थान पर जाते हैं, नेशनल कोई एक पार्क, मरीन पार्क, और वहां पर एक बहुत खतरनाक भालू उनको मिलता है और उसकी बेटी को बचाने के लिए वो बीच में आ जाता है, भालू यहाँ और वो सामने, और वो भालू उसको पूरा के पूरा नोच डालता है। वो लिखता है कि भालू ने जब अपना पंजा मेरे सिर पे मारा तो मुझे लगा कि अंदर ब्रेन तक उसकी नाखून अंदर जा रहे हैं, इतना गहराई से उसने मुझे चोट की और पूरा ही पकड़ लिया। अब ऐसी हालत हो गई कि यहाँ खाई थी, मैं यहाँ खड़ा था बस खाई के पास, और भालू आगे आगे आने लगा और मैं पीछे पीछे जाने लगा और भालू ने पकड़ लिया ऐसा पूरा पंजा मार के, और अब मेरे पास बचने का केवल उपाय था, बचने का क्या, मरने का ही कहो, क्योंकि नीचे खाई थी तो खाई में कूद जाना। तो उसने कहा अब क्या करूँ, वैसे भी मरना ही है। तो वो नीचे अपने आप को छुड़ा के भालू से नीचे कूद गया और वो खाई बहुत 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 गहरी थी। पर उसने लिखा है कि मैं वहां पर एक पत्थर आया बीच में, उसको पकड़ के बच गया। पर सारी यहाँ की वो पूरा उसका वर्णन है, कितनी हड्डियां टूटी यहाँ की हाथों की और वो जो मस्तिष्क पूरा बाहर, और ये हालत हो गई। पूरी अमेरिका में ये खबर उस समय छपी थी। तो बहुत मुश्किल से वो वहां से आधा घंटा तक वैसे ही लटका रहा, और फिर वहां से आने जाने वाले लोगों ने देखा और फिर फटाफट फटाफट सब कुछ किया, फटाफट हेलीकॉप्टर आया और उनको, उसकी डॉटर को भी बहुत सारी, जीना जिसका नाम था, उसको भी बहुत सारी चोटें लगी और उन दोनों को फिर अस्पताल लेके गया। 3-4 मास तक तो अस्पताल में ही थे, इतने सारे फ्रैक्चर्स और इतने सारे ऑपरेशन और वो सारा कुछ। और वो जब ठीक हुआ और जब उसको छुट्टी हुई तब उसका इंटरव्यू और ऐसे बहुत सारे साक्षात्कार लिए गए, जिसमें उससे इस तरह के प्रश्न पूछे गए कि आपकी क्या फीलिंग थी उस समय क्या अनुभव था। उसने बाद में यह किताब भी लिखी उसके ऊपर, अ ग्रिजली टेल, उसमें भालू का ही चित्र है अ फादर एंड डॉटर सर्वाइवल स्टोरी। ये उधर का भालू है, अमेरिका का भारत का अलग, ये उधर का है, भारत का काला होता है। तो उससे प्रश्न पूछे गए कि तुमको कैसे लगा, क्या तुमको भय लगा। उसने एक चीज कही कि जब मैं पहली बार मेरा सामना हुआ तो जैसे भय समाप्त हो गया था। अपनी बेटी को बचाने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि मैंने उस भालू का आंख, उसकी आंखों में आंखें डालकर उसका सामना किया, जबकि उसने मेरे हाथ वो सब तोड़ दिया था, यहां की हड्डियां टूट गई थी, परंतु मैं अंदर से एकदम शांत था। ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था मैं इतना शांत कैसे था। उसने वो पूरा स्कल के स्कल उसने उखाड़ लिया था भालू ने, उसके पूरे नाखून अंदर जाते हुए मुझे फील हो रहे थे जैसे कोई स्क्रू ड्राइवर अंदर जा रहा है, कोई डाल रहा है, वैसे फील हो रहा था कि अंदर ऐसे ऐसे नाखून अंदर जा रहे और पूरा खून से लथपथ। तो उससे पूछा गया कि तुमको भय नहीं लगा, उसने कहा कि भय समाप्त हो गया था, भय था ही नहीं, मैं एकदम शांत हो गया था अंदर से। ऊपर से पुकार रहा था भालू जाने के बाद कि कोई बचाए, परंतु अंदर से फिर भी शांत था। अब यह भी पता था कि जो हालत हुई है इससे ठीक होने में पता नहीं कितना समय लग जाएगा, इतना तो अंदाजा आ गया कि अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और वो लंबा चलने वाला है, ये एक दो दिन की बात नहीं है, लंबी सर्जरीज होंगी, क्या 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 होगा, कितने समय तो वो ऐसे होता है ना कॉलर वो पहना के रखा था उसको, क्योंकि सब फ्रैक्चर्स थे। पर फिर भी उसने कहा कि मैं जैसे भगवान को धन्यवाद दे रहा था कि कम से कम मैं बच तो गया, और ये इच्छा बहुत प्रबल थी कि मैं मरूंगा नहीं मैं मरूंगा नहीं। तो ऐसा उसने वर्णन लिखा है, अ ग्रिजली टेल, ये कहानी। तो क्या कठिन से कठिन परिस्थिति में शांत रहा जा सकता है, स्थिर रहा जा सकता है? ये संसार के वो लोग हैं जिनका अध्यात्म से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, परंतु फिर भी ऐसी विकराल परिस्थितियों में भी वो शांत रहे। तो बाबा ने कहा तुमको भी शांत रहना है, जैसे किसका उदाहरण दिया, सागर का। आज हम चर्चा करेंगे ये दो, 6 महावाक्य है तो 5 और 6 की चर्चा करेंगे जो छोटे छोटे हैं। तो इसमें 4 शक्तियों का वर्णन है 5 में, जिसमें एक शक्ति बाबा ने कहा पावर ऑफ साइलेंस। बाहर से परिस्थितियां कितनी ही विकराल हो, जैसे समुद्र बाहर से आवाज करता है परंतु अंदर से कैसा होता है, शांत। बाहर से आवाज चालू है परंतु अंदर से एकदम प्रशांत। तो और जितना सागर गहरा होगा उतना वो शांत होगा, उसकी अतल गहराई में बहुत शांति है। बाहर कितनी हलचल है, लहरें आ रही है, एक पल भी नहीं रुकती रहे लहरें। क्या ऐसा कोई सागर है कि जिसकी लहरें अभी रुक जाए फिर थोड़ी देर बाद आए? एक भी पल नहीं रुकती है, कंटिन्यूअस निरंतर आती रहती आती रहती आती रहती आती रहती, कभी ज्यादा कभी कम, पर आना जरूरी है और निरंतर है। तो बाबा ने यहां पर पूछा है कि क्या ऐसे शांत रह सकते हो जैसा सागर? सागर ही क्यों चुना बाबा ने अपने लिए? ये भी इसके पहले भी एक बार प्रश्न पूछा था। संसार में हजारों चीजें, सूर्य भी कहा बाबा ने अपने लिए, अपनी उपमा बाबा ने बहुत सारी चीजों से की है। वो पहाड़ है स्वीट का, वो सूर्य है ज्ञान का, वो सागर है, पर सबसे ज्यादा पहली उपमा जो उसने अपने लिए प्रयोग की, इस संसार की कोई वस्तु अगर उठाई तो वो सागर उठाई। क्यों? सागर की क्या विशेषता है? सागर की कुछ तो ऐसी विशेषताएं होगी जो सूरज में भी नहीं है। उसने अपने लिए कहा वो बीज है, उसने अपने लिए कहा मैं सितारा हूं, उसने अपने लिए कहा मैं सूरज हूं, उसने अपने लिए कहा मैं और क्या है, पहाड़ हूं, उसने अपने लिए कहा मैं स्टार बोल दिया ना, चुंबक हूं, उसने अपने लिए कहा मैं ब्लॉटिंग पेपर, वो नहीं प्रोफेशन नहीं, वस्तु वस्तु वस्तु, उसने वस्तु से अपनी तुलना की है, जिनका कोई वो पारस, वो कोहिनूर, वो डायमंड, वो मणि मोती, ये जैसी आत्मा है वैसा वो है, ऐसा उसने कहा है, बिंदु बिंदु। परंतु इन सब से ज्यादा उसने सबसे पहले अपने लिए कौन सी उपमा दी? सागर की। क्यों? सागर में क्या विशेषता है? आज इस पर लिखना, सागर की विशेषता है समाने की। अच्छा, वो समाता भी है फेंकता भी है, ऐसी बहुत सी विशेषता है सागर की। सागर में ऐसा कुछ तो है, और सागर के किनारे बैठकर किसने किसने योग किया है एक बार किया है सागर के किनारे बैठकर, सागर को देखते हुए कि ये है शिव बाबा, ऐसा है वो, दूर दूर तक कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतना दूर कोई नहीं दिखाई देता है, वो सागर समुंदर। तो सागर की विशेषता है, आज लिखना थोड़ा बैठकर, सागर में क्या क्या विशेषता है। तो बाबा ने कहा एक विशेषता सागर की, सागर कैसा है नीचे? एकदम प्रशांत, बहुत शांत, ऊपर लहरें है, ऊपर ऊपर लहरें है, ऊपर आवाज है, ऊपर तरंग है, ऊपर रंग है, बदलता है, अंदर शांत है। तो यहां पर चार शक्तियों की बात कही है, फोर पावर। सबसे पहला है पावर ऑफ स्टेबिलाइजेशन, एक सेकंड में बाबा ने कहा अपने आप को स्थित कर सकते हो अव्यक्त स्थिति में, और एक सेकंड में अव्यक्त स्थिति से बाहर, आत्मा की स्थित होने की शक्ति एक सेकंड में, एक सेकंड में अव्यक्त, एक सेकंड में व्यक्त, ये पहली पावर। दूसरी पावर बताई कंट्रोलिंग पावर, हलचल में अचल एक सेकंड में हो सकते हो, और फिर ये भी कहा कि अगर अभी कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो विश्व का कंट्रोल कैसे करोगे? अगर अभी अपने देह को नहीं चला सकते हो तो राज्य को क्या चलाओगे? ये भी कभी कहा है बाबा ने। शरीर को ही नहीं चला सकते, बार बार अपनी ही गलतियों की वजह से जो बीमार पड़ता है बाप उसे ज्ञानी तो योगी आत्मा नहीं कहते। ये दूसरी पावर। तीसरी पावर बताई साइलेंस पावर, जिसमें ये उदाहरण दिया समुद्र का। और चौथी पावर बताई समेटने की शक्ति, समेटने की शक्ति में क्या, विस्तार को सार और सार को विस्तार, इसमें दो चीजें, सार से विस्तार और विस्तार से सार। कौन सा कठिन है? दोनों ही कठिन है। दोनों के लिए अभ्यास चाहिए। एक तो है सार को विस्तार करना, अर्थात सार को विस्तार करना अर्थात यह है ज्ञान चिंतन। एक है विस्तार को सार करना अर्थात योग। इसको कहते हैं योग, इसको कहते हैं ज्ञान का चिंतन, मनन चिंतन। मनन चिंतन अर्थात एक पॉइंट लेना और उसको क्या करना, विस्तार करना। परंतु फिर भी अगर देखा जाए तो यह ज्यादा आसान है। चिंतन, चिंतन किया जा सकता है, परंतु योग में जो कुछ किया है सारा कुछ विस्तार को समेट के एक बिंदु में ला लो, यहां ये है योग। तो सार को विस्तार, विस्तार, और ये सब भी कितना देर में करना है, कितना टाइम मिला है, एक दिन, एक सेकंड, एक घंटा, एक हफ्ता, एक मास, एक सेकंड में। चारों ही कार्य एक सेकंड में करनी है। चार शक्तियां भवन का, एक सेकंड में स्टेबिलाइजेशन पावर, एक सेकंड में साइलेंस पावर, एक सेकंड में कंट्रोलिंग पावर, और एक सेकंड में समेटने की शक्ति। समेट लो अपने आप को तुरंत। क्या यह हो सकता है, ऐसा प्रश्न पूछा है। तो माइंड को इतना स्टेबल करना है, ऐसी कंट्रोलिंग पावर अंदर लानी है। एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि मन को वश में करना इतना मुश्किल क्यों है। तो शिष्य, गुरु एक दूसरी कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं एक हाथी सोया था, बैठा था शांति से, और एक मक्खी भिनभिनाती हुई कानों के पास आती है। वो हाथी उसको ऐसे कर देता है, एकदम दूर कर देता है। फिर से आती है भिनभिनाती हुई कानों के पास, हाथी फिर दूर कर देता है। फिर से आती है, फिर हाथी उससे पूछता है, व्हाई कांट यू स्टे काम, तुमको शांति से नहीं बैठने आता है क्या? मैं देखो कैसे शांति से बैठा हूं, तुम इतना क्यों हलचल होती, हलचल में रहती हो, क्यों तुम्हारा मन इतना अस्थिर है, क्यों एक जगह क्यों नहीं रुक पाती तुम? तो वो मक्खी कहती है, मैं क्या करूं मैं आकर्षित होती हूं, जो चीजों से सुगंध आती है, जो चीजें मुझे दिखती है, जो मुझे सुनाई देता है और जो मुझे दिखता है, और सुगंध मैं जिसके लेती हूं, वो हर चीज मुझे आकर्षित होती है। मेरी सारी इंद्रिय बाहर की ओर भागती है, मैं जो कुछ देखती हूं वो मुझे आकर्षित करता है, और जहां मन जाता है फिर मैं जाने की कोशिश करती हूं, और इसलिए मेरे अंदर बेचैनी है। तो वो मक्खी हाथी से पूछती है कि आप इतने शांत कैसे? तो हाथी कहता है, मैं अपनी इंद्रियों को यहां वहां जाने नहीं देता, मैं अभी खा रहा हूं तो केवल खाता हूं बस, मैं अभी रेस्ट कर रहा हूं, आराम कर रहा हूं तो केवल आराम करता हूं, दूसरा और कोई काम करता ही नहीं, एक समय बस एक ही काम करता हूं, सुन रहा हूं तो केवल सुन रहा हूं, ये नहीं यहां बैठ के अभी आज नाश्ते में क्या है, आज सोमवार क्या बना है, अच्छा पोहा ही बन रहा है या और कुछ बन रहा है, अच्छा मुझे कितना खाना है, उसके साथ और क्या खाऊं, उसकी प्लानिंग चल रही है, मुरली क्लास में बैठे बैठे फुल प्लानिंग, गहन चिंतन, दोपहर का क्या करना है, वही लेना है कि कहीं जाना है, अच्छा ये। तो हाथी कहता है, मैं अपनी इंद्रियों को यहां वहां देखने नहीं देता। जैसे कल भी हमने चर्चा की थी पांच बातें, कि आंखें, रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध, इसको यहां वहां जाने ही नहीं देना। उसमें एक बात रह गई थी, ये नाक वाली, वो एक भाई ने कहा था कि आपने सुगंध का बताया, दुर्गंध का तो बताया नहीं दुर्गंध सहन करने की भी शक्ति चाहिए। वो दादी का उदाहरण है, क्लास करा रही थी और अचानक हवा में से दुर्गंध आने लगी, सब लोग ऐसे ऐसे कुछ कुछ करने लगे नाक को हाँ गंदी दुर्गंध आने लगी, तो सब अपने नाक विक बंद करने लगे। दादी ने कहा, यही है कि तुम्हारी शक्ति, दुर्गंध सहन करने की भी शक्ति नहीं है। दुर्गंध होता है तो नक्की के इधर उधर कैसे जाते जो भी है, पर सब कुछ सहन करने की शक्ति चाहिए। जो आग लगी थी वहां कानपुर में, सब कुछ जल गया था, कैसी दुर्गंध होगी, चारों ओर जल रहा था, पूरा शहर के शहर जल रहा था। फिर दुर्गंध कैसी होगी, तब कहोगे कि ये हेल्थ के लिए अच्छा है, नहीं है, मुझे तो अच्छा नहीं है, मैं तो उधर जाता हूँ। जहां जाओगे वहां आग होगी, एक समय आएगा चारों ओर आग ही आग होगी, और केवल आग इधर ही नहीं, ऊपर से भी आग के गोले बरसेंगे। प्राकृतिक आपदाओं में एक वो भी है, ऊपर से आग के गोले गिरेंगे, तब क्या करेंगे? समुद्र में चले जाएंगे। तो वो भी, तो वो हाथी कहता है कि मैं अपनी इंद्रियों को वश में रखता हूं। हाथी को देखा है ना, बैठता है तो शांति से बैठता है, इधर उधर कहीं उसका बुद्धि नहीं जाती है, आंखें बस वो जाए वाए, और मक्खी ऐसे 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 ऐसे, पतंगे बेचैन रहते हैं निरंतर। तो इसलिए कंट्रोलिंग पावर अर्थात माइंड को वश में करने का, एक सेकंड में माइंड को इधर से उधर, अभी अभी उधर है अभी उधर से निकाल के इधर, अभी अभी इधर है अभी इधर से निकाल कर उधर, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, है ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, एट वन मिनट सर्विंग द पुअर, गरीबों की सेवा कर रहे हो एक पल, अनदर मोमेंट गोइंग इन द टेम्पल एंड वर्शिपिंग, दूसरे पल मंदिर में जाके पूजा करे, थर्ड मोमेंट कमिंग आउट एंड सिटिंग इन मेडिटेशन, फोर्थ मोमेंट गोइंग इन द जंगल एंड गेटिंग लॉस्ट इन समाधि, समाधि में खो जा रहे, अभी अभी ये, अभी अभी वो, अभी अभी वो, अभी अभी वो। और ऐसे भी नहीं कि मेडिटेशन कर रहे और कोई कहे चलो सेवा के लिए, कि मैं अभी नहीं आ सकता, मैं अभी गहन समाधि में हूं, उधर से उधर भी आना चाहिए, उधर से उधर भी जाना चाहिए। बाबा ने दोनों चीजें कही है, विस्तार को सार को भी में करना है, सार से विस्तार में भी जाना है, और जो पहला बताया अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त, एक है अव्यक्त से व्यक्त, एक है व्यक्त से अव्यक्त। ये तो प्रैक्टिस बहुत है, व्यक्त से हम अव्यक्त में जाते हैं क्योंकि ये योग का अभ्यास है, पर योग के अभ्यास से भी कर्म में तुरंत आना, ये भी एक अभ्यास है। अव्यक्त से सीधा अव्यक्त, अव्यक्त मौन से वाचा, क्योंकि मौन में ज्यादा जाने के बाद में बोलने की इच्छा खत्म हो जाती है, बोलने की इच्छा ही नहीं होती है कुछ, और बोलना जरूरी हो तो बोलना पड़ेगा फिर, हाँ लिख के। तो ये चार शक्तियों के लिए बाबा ने कहा, स्टेबिलाइजिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, पावर ऑफ साइलेंस, और चौथा समेटने की शक्ति, समेट लेना, पैकअप। और फिर जो दूसरा है छह, इसमें एक ही चीज कहिए, तुम्हारा जो अतीन्द्रिय सुख है वो देख के क्या हो जाए, दूसरे भी दुख से सुख में आ जाए, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा मुख, और क्या नयन आंखें, ये सब कैसी हो, सुखदाई, कि जिसको देखते ही दूसरे भी सुख हो जाए, सुख में ही हो जाए, सुख में आ जाए। तो एक ही चीज यहां जो कही है वो है अति इंद्रिय सुख, सुपर सेंशुअस ब्लिस। एक है इंद्रिय सुख, एक है अति इंद्रिय सुख, दोनों में क्या अंतर है, या इंद्रिय सुख क्या है? इंद्रिय सुख अर्थात उदाहरण स्पर्श का सुख, इंद्रिय सुख, और इंद्रिय सुख अर्थात स्वाद, इंद्रिय सुख अर्थात, ये पांचों ही इंद्रिय सुख है, रूप रस स्पर्श शब्द गंध, इन में से जो भी सुख मिलता है, जैसे कोई गीत सुन रहे हैं वो आंखों का कानों का सुख है, कुछ दृश्य दिखाई दे रहा है, अच्छा दृश्य है, बहुत सुंदर दृश्य है, वो भी एक सुख है, बहुत सुगंध है फूल, वो भी एक सुख है, जबान कुछ खा रहे वो भी एक सुख है, और टच कर रहे किसी को वो भी एक सुख है, परंतु इन सुखों में दोष क्या है? अल्पकाल के, और ये सुखों में दोष क्या है? जो जो सुख देने वाला है वो सभी दुख देने वाले बन जाते हैं, शुरुआत में सुख देने वाले बाद में दुख देने वाले बन जाते हैं, और ये सुखों में एक दोष है सबसे बड़ा, ये सभी सुख एडिक्टिव है, ये सुख एडिक्शन कॉज करते हैं, ये सुखों से लत, ये सुखों की आदत पड़ जाती है। एक चीज खाओ उसको रोज खाते रहो, रोज खाते रहो, फिर वही चाहिए। एक संगीत सुनो पर वो उसकी आदत पड़ जाती है, उसी तरह का संगीत सुनना चाहता है। एक चीज को स्पर्श करो फिर उसी को स्पर्श करने की इच्छा होती है बार बार, उसी स्पर्श में उत्तेजना है। साइको सोमैटिक इफेक्ट है उसका। फिर मन ने कह दिया कि नहीं, परंतु शरीर डिमांड करता है, फिर शरीर खींचता है, शरीर को चाहिए फिर वो। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल से क्या होता है, दारू पीता है व्यक्ति, क्यों उसको चाहिए बार बार। स्मोकिंग करता है, स्मोक में क्या है, निकोटीन में ऐसा क्या है, क्योंकि इसके अंदर के जो तत्व है वो जैसे ही ब्रेन में जाते कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज कर जाए जो तन बदन में एक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराते। तो व्यक्ति स्मोकिंग इसलिए करता है क्योंकि वो स्मोक करते ही ब्रेन से केमिकल रिलीज होते, और वो ब्रेन से केमिकल जो रिलीज होते हैं वो उसको बहुत सुख पहुंचाते हैं। और जीवन में संघर्ष है, बहुत सारी चीजें है, जैसे ही वो पीता है, नशा करता है, वो भूल जाता है थोड़े समय के लिए। अब अगली बार क्या हो रहा है, उसको पता है इसमें है कुछ भी नहीं, इससे मेरा नुकसान हो रहा है इतना बीड़ी से, पर वो जो सुख का जो अनुभव हुआ वो एडिक्शन है, वो सुख का अनुभव खींचता है। उसको पता है कि ये जैसे ही मैं पीऊंगा वो केमिकल यहां से रिलीज होता है और एकदम तन बदन में शांति राहत मिलती है, उसके वजह से वो एडिक्शन क्रिएट हो जाता है। तो ये सारे जो सुख है इंद्रियों के, ये जैसे ही भोगे जाते हैं इनसे शरीर से ज्यादा ब्रेन में कुछ होता है। जैसे रसगुल्ला खाया, क्या हो गया यहां से कुछ, जैसे चॉकलेट खाया, कुछ हार्मोन्स यहां से रिलीज होते हैं और जो बहुत सुख महसूस कराते हैं। वो खाली टेस्ट की बात नहीं रह जाती है यहां पर, खाली शरीर की बात ही नहीं है, यहां मन इन्वॉल्व हो जाता है। और जहां शरीर और मन, साइकोसोमैटिक, सोमा अर्थात बॉडी, साइको अर्थात माइंड, साइकोसोमैटिक हो जाते हैं, तब फिर उससे छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनका दोष है, एक दोष सबसे बड़ा दोष है, वो एडिक्टिव है। सभी स्पर्श किया तो बार बार वही स्पर्श करना चाहता है। होल्डिंग, टचिंग, किसिंग, ये सारी जो चीजें हैं ये एडिक्टिव है, खींचती है फिर आत्मा को, क्योंकि क्रिया में कुछ भी नहीं है, क्रिया में कुछ नहीं है, परंतु उसके वजह से कुछ ऊपर हो रहा है। सारा संसार क्यों पागल है काम विकार में, उसका भी यही कारण है, क्षणिक अशरीरीपन, क्षणिक ईगोलेसनेस, एक झलक है उसमें। जो योग की जो श्रेष्ठतम अवस्था है अशरीरीपन की, परम धाम की, आत्मा शरीर को भूल जाती है विकार में एक पल के लिए, और उसे ऐसा अनुभव होता है, इसलिए वो एडिक्शन क्रिएट होता है, इसके लिए वो खींचते रहता है उसको, बार बार खींचते रहता है अपनी तरफ। और ये सबसे बड़ा आकर्षण है आत्मा का, इसलिए द्वापर से आत्मा बंदी हो गई, बंदी बन गई इसके पिंजड़े में, छूट ही नहीं पाई। जब तक भगवान ना आए तब तक कोई भी नहीं छुड़ा पाया, इतने बड़े बड़े सब लोग आए पर इससे कौन छुड़ा पाया, कोई भी नहीं छुड़ा पाया, कोई भी धर्म स्थापक नहीं छुड़ा पाया काम विकार से, क्योंकि सबसे गहरी पकड़ इसी की है, जन जन से भरी हुई है। और ऐसा जबरदस्त एडिक्शन है कि इतने 80 साल हो गए फिर भी वही वही चीज हर मुरली में, वही रिपीटेशन, संपूर्ण पवित्रता, ये सारा पुरुषार्थी पवित्र बनने का इसीलिए, क्योंकि ये पकड़ सबसे गहरी है। इसके लिए अगर कोई सोचे कि मैं हां काम विकार से मुक्त हो जाता हूं बाकी इंद्रियों को छोड़ दे, ये कभी नहीं हो सकता। सभी इंद्रियों को एक साथ वश में करना होगा, जवान को भी, टेस्ट को भी, क्योंकि टेस्ट का और काम विकार का सीधा संबंध है। कोई कहे कि मैं काम विकार, ये पवित्र तो बहुत है पर इसकी रुचि इधर बहुत ज्यादा है, टेस्ट में बहुत ज्यादा रुचि है, ये काम विकार के वश को वश नहीं हो सकता है, क्योंकि काम का संबंध टेस्ट से है, जनेन्द्रिय का संबंध रसेन्द्रिय से है। इसके लिए बहुत जरूरी है। तो पांचों ही इंद्रियों को वश में करना है। गीता में एक श्लोक है जिसमें लिखा है, यदि कोई योगी चार इंद्रियों को वश में करता है, एक को छोड़ देता है, तो वो एक ही इंद्रिया उसे वैसे ही बहा के लेके जाएगी जैसे कोई नाव समुन्द्र में है उसे तूफान उड़ा के ले जाता है। अगर एक इंद्रियों को छोड़ दिया, इसके लिए पांचों को ही वश में करना पड़ेगा। क्या हम देख रहे, क्या हम सुन रहे, क्या हम खा रहे, क्या हम सूंघ रहे और क्या हम स्पर्श कर रहे, पांचों ही वश में हो जाए। और इनको वश में करने की विधि है अशरीरीपन। अशरीरी हो जाए, देह ही मैं नहीं हूं, क्योंकि ये सारे सुख कहां से आ रहे हैं? शरीर से। हमारा पुरुषार्थ है शरीर से बाहर निकलने का। शरीर नीचे, मैं ऊपर, तो इससे मेरा कोई संबंध ही नहीं। और शरीर से भी वैराग लाने की विधि है, शरीर किस चीज से बना है? तत्वों से। तो तत्वों से वैराग लाना कि मैं इन तत्वों से अलग हूं, इन तत्वों से ही मुझे वैराग है जिससे यह देह बना है। तत्वों से वैराग अर्थात देह से वैराग, और देह से वैराग अर्थात देह की जो इच्छा है, कामना है, वासनाएं है, उनसे वैराग। और जो आत्मा इन सब से ऊपर रहती है, वो आत्मा के जगत में विचरण करती है, ऊपर संकल्पों के जगत में। फिर उसका सुख इसमें नहीं है, यहां के कोई सुख उसको ठीक नहीं लगते, भाते नहीं है, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। यहां की चीजें उसको प्रभावित नहीं करती है, बहुत ठंड बहुत गर्म जो है वो है। इसके लिए अति इंद्रिय सुख अर्थात अशरीरीपन, शरीर के ऊपर उठकर जो सुख प्राप्त किया जाए। ऐसा जब सुख हमारे पास होगा तो ही दूसरी आत्माएं आकर्षित होगी, तो ही आकर्षण होगा। वाणी का जो आकर्षण है उसका कारण भी यही है, क्योंकि जो यहां रहकर बोला जाएगा उसमें आकर्षण है शरीर के ऊपर। जो शरीर भान में बोला जाएगा, भले वो वैराग की बातें करे आत्मा, पर सुनने वालों को कभी वैराग नहीं आएगा उससे क्योंकि जो हमारे अंदर है वही हम दूसरों को दे सकते हैं। जो हमारे पास है ही नहीं वो हम दूसरों को दे ही नहीं सकते। हमारे अंदर ही वैराग नहीं है, हम ही भोग विलास युक्त जीवन में लगे हुए। उस दिन पढ़ के भी सुनाया था ना, जहां भोग है वहां योग नहीं, सीधे महावाक्य है बाबा के। जिसकी रुचि भोग विलास में है, क्योंकि भोग विलास का स्वभाव है वो कभी भी पूर्ण नहीं होते। महात्मा बुद्ध ने कहा है, पाली भाषा में शब्द है दुष्पूर, दुष्पूर अर्थात अतृप्त ही रहती है। कितना भी भोगो, कितना भी भोगो, कितना भी भोगो, सब भोगने के बाद में भी ऐसा लगता है कुछ भी नहीं किया, तो वो उसका स्वभाव, उसके उसकी फितरत में ही अतृप्ति है भोगों के। तो भोगों के स्वभाव को भी समझना है। इतने भोग भोग लिए, क्या मिला? फ्रस्ट्रेशन, जीरो। हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं। क्या अभी भी वही मूर्खता करनी है? अभी भी वही गलतियां करते रहना है? अभी भी तक शरीर के ही सुख भोगते रहे, या तो अपने शरीर का या तो दूसरे के शरीर का, और दूसरी आत्मा को भी पाप का भागी बनाया भोग में। एक है खुद अकेले भोगना, एक है दूसरों को भाग को भागी बनाना। स्वयं तो पतित बनी रहे, दूसरों को पतित बना रहे, चाहे दोनों की इच्छा है, चाहे एक की है एक की नहीं है, वो कुछ भी हो उससे संबंध नहीं है। संबंध है देहभान में आने का। एक है अकेले देहभान में आना, एक है किसी को मिलके साथ में देहभान में आना। दोनों ही पतित बन रहे, ये तो डबल पाप है। और वो केवल शरीर के तल की हम बात नहीं कर रहे, वो शब्दों के तल की, किस तरह की शेयरिंग चल रही है, व्हाट्सएप मैसेजेस, मेल्स, सोशल मीडिया पर, सेंशुअल जोक्स, सेंशुअल टॉक्स, और उससे भी गहरा है संकल्प, और उससे भी गहरा है कल्पना। कल्पना के तल पर डे ड्रीमिंग, और उससे भी गहरा है स्वप्न। पर स्वप्न परिणाम है ये सबका। तो इंद्रिय सुखों के दोषों का चिंतन करना है, कैसे डुबोया, कैसे गर्त में डाला, कैसे मुंह काला कर दिया, कैसे पतित बना दिया, कैसे अग्नि में जलाया, उस दिन कहा का कब्रस्तान, कैसे पांचवी मंजिल से नीचे गिराया, कैसे भिखारी भिकमंगा बना दिया, कैसे अनाथ बना दिया, कैसे पतित विकारी बना दिया, छीछी बना दिया, रौ रौ नर्क में ढकेल दिया इस विकार ने, इस देह के सुख ने। हम केवल अब काम के सुख की बात नहीं कर रहे, सारे ही देह के सुख, क्योंकि एक का नहीं हो सकता है, सारों से वैराग चाहिए, तो ही आत्मा शरीरपन का अवस्था का अनुभव करेगी। तो बाबा ने कहा ऐसे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करो। ओम शांति।